हमारे आदरणीय निर्देशक इस शिक्षा आश्रम के विद्या आश्रम के निर्देशक पूर्व प्रधान अध्यापक उप निर्देशक विधि पूर्व प्रधान अध्यापक वर्तमान प्रधान अध्यापक हमारे यहाँ के शिक्षक समुदाय जाने और बेटिया
समय हो गया हमको भी लेना है। इन्हें दो एक शब्द में
सबों में कुछ ही जाति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि कुछ समय में स्थापित करते हैं। प्राचीन काल से हमारे भारतीय संस्कृति की ये नीति रही है, गीता में है, देखिए ये तुलसी जाति का रामायण, गीता और भागवत और वेद निगम आगम का ये सार है। उन्होंने केवल मनुष्य समाज के लिए नहीं, केवल भारतवासियों के और हिंदुओं के लिए नहीं, ये विश्व के लिए एक अनुपम ग्रंथ है। जिस प्रकार से वेदों का कोई लेखक नहीं, पुराणों का कोई लेखक नहीं, उपनिषदों का कोई लेखक नहीं, भागवत और गीता का कोई लेखक नहीं, जिनके हृदय में वो प्रकाशित हुआ हो, वेद ब्रह्मा के हृदय में, किंतु वेद नित्य अजर अमर, वो केवल ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकटित होकर के उनके मुख से निकले, इसलिए वेद के लेखक व्यास ब्रह्मा ने। व्यास जी भागवत के लेखक नहीं, उसको अपने मुख से या अपने लेखनी से व्यक्त करने जाते। यह चीर अमर शाश्वत और दिव्य ग्रंथ, इसकी अनुभूति उन्होंने भक्ति योगेर मनसा सम्यक पंडिते अमले अपश्यतपुर संपूर्ण बाह्यांश जलभाष। उन्होंने भक्ति योग के आश्रय से भगवान की सारी लीलाओं को प्रत्यक्ष अपने हृदय में देखा और जस्य आवै सूयमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्धति पुरुष शोक मोह गया। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने केवल अक्षरात्मक रूप में उसको व्यक्त किया, लेखक नहीं है व्यास, गीता के लेखक व्यास जी नहीं है, वो तो मूल वक्ता कृष्ण है, उनके वचनों को उद्धृत करके गीता नाम से लिख दिया। तुलसी जी का रामायण यह नित्य शाश्वत है, तुलसीदास जी ने लिखा नहीं, बनाया नहीं, उनके हृदय में ये प्रकटित हुआ, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस, रामचरित वह रामचरित जो तुलसी जी के हृदय में, मानस मन हृदय में भक्ति के द्वारा आविर्भूत हुआ, यह रामायण नित्य है। इसलिए उन्होंने इसको इस रूप में व्यक्त किया जैसा कि उन्होंने देखा, समाधि अवस्था में उन्होंने देखी और उसको यथाजुक्त उन्होंने संहिता के रूप में इसको लिखा। इसलिए इसके लेखक नहीं बल्कि इसके प्रकाशक हैं। हमारे किसी भी भारतीय व्यास जी ने, नारद जी ने कहीं भी अपने ग्रंथों में लेखक के रूप में अपना परिचय नहीं दिया और अपने स्थूल जीवन का परिचय नहीं दिया। तुलसीदास जी भी उसी परंपरा में है, वो जानते हैं कि स्थूल शरीर का कोई महत्व नहीं है। यह एक कपड़ा है, यह शरीर, इस शरीर का जन्म कहां, कोटि कोटि जन्म में कभी सुअर होकर के पैदा हुए, कभी देवता होकर के पैदा हुए, कौन जन्म में हम कहां थे, किंतु उसमें आत्मा अजर अमर शाश्वत ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। तुलसीदास जी ये शरीर नहीं थे, उस आत्मा थे, इस चीज को समझना है। फिर कौन से जन्म में कहां उनका जन्म हुआ, इसकी लिखने की कोई जरूरत उन्होंने समझी, वाल्मीकि जी ने लिखा, व्यास जी ने भी अपना ये शब्द लिखा। ये गौण चीजें हैं, आत्मा अजर अमर है। कहां इसका जन्म स्थान, अरे इसका जन्म स्थान तुलसी जी का जन्म स्थान साकेत में है, अयोध्या में है, इस चीज को समझना चाहिए। उन्होंने बार बार तुलसी की रामायण में इसका परिचय भी दिया, किंतु जो समझे तो समझे। इसलिए तुलसीदास जी इस जगत के जीव नहीं थे, इस जगत में उनका ऐसा ये जन्म इत्यादि ये सब जिस रूप में विद्वान लोग करते हैं, संत लोग दूसरे रूप में देखते हैं। संतों और विद्वानों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का उनमें अंतर है। विद्वान लोग उसके भौतिक जीवन को लेकर के चलते हैं, विद्या के बल पर चलते हैं, और संत लोग उल्टा नाम
जपत जगत जाना बार्मीक भय ब्रह्म समान है। स्कूल कॉलेज में नहीं गए, बस मरा मरा से राम राम करते 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 उनको वह सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान की सारी लीलाएं, समस्त जगत का तत्व, वेद, उपनिषद, निगम, आगम सब उनके हृदय में प्रकट हो। ये साधना का जिन चीज है, तुलसीदास जी का ये साधना का फल, ये रामायण उनके हृदय में प्रकट हुआ, जिसको जगत कल्याण के लिए उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए अपने संबंध में उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये हार्ड मांस श्याम का और पृथ्वी ये मट्टी से बना हुआ, इसका जन्म का क्या विवरण होते हैं? वो तो साकेत के राम के नित्य परिकर है। इसलिए उन्होंने ये सब का परिचय नहीं दिया। विद्वान लोग ये मट्टी का परिचय देंगे जो वहां कहां बादा में उनका जन्म हुआ, अथवा एटा के किसी जन्म हुआ, या सोरों में उनका जन्म हुआ, या कहां। संत लोग विचार करके देखते हैं, नहीं तब तुलसीदास जी का यहाँ जन्म नहीं, वो तो साकेत कराने वाले नित्य परिकर भगवान के हैं। इस जगत में एक बहाना लेकर के, अभिनय करके इस जगत में आए हैं, इसलिए उनका असल जन्म स्थान, उनका जन्म ही नहीं है, मरण ही नहीं है, वो तो नित्य काल गोलोक धाम के वासी है। पहले इस चीज को तुलसीदास जी का नाम है समझने के लिए उत्तरकांड को थोड़ा सा देखना है। विद्या की चीज नहीं है ये, विद्या के अभ्यास से नहीं होता, ये साधन का चीज है। बिना साधन के उसकी अनुभूति नहीं होगा। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूं। द्रोणाचार्य की पाठशाला में सब छात्र भरे पड़े, सौ भाई तो दुर्योधन ही था और पांच भाई पांडव थे। एक दिन गुरु जी ने पाठ दिया, कल याद करके आना, सच बोल सत्यम वर। दुर्योधन हाथ उठाया, बोले मुझको गुरु जी अभी याद हो गया। अरे भाई ठहरो, कल सुनाना। नहीं गुरु जी आज ही सुन लीजिए, सत्यम वर सच बोल। मैंने कहा भी तुमको याद नहीं, गुरु जी आप से करे जी याद नहीं। अच्छा तो तुम कहो और सभी छात्र लोग कहो तैयार होकर के इसको याद करके आए। दूसरे दिन सभी छात्र लोग आए, उन्होंने पूछा बेटो सब तुम लोगों ने याद कर लिया? जिसको जिसको याद हो गया है वो हाथ उठाए। एक तरफ से सब लोगों ने हाथ उठाया, केवल युधिष्ठिर महाराज जी ने हाथ नहीं उठाया, सब लोगों ने। उन्होंने और किसी से कुछ नहीं पूछा, युधिष्ठिर महाराज जी से, युधिष्ठिर से पूछा, बच्चे ये तो बताओ कि तुमको क्यों नहीं याद? युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा, अभी बच्चे आप लोग जैसे छोटे छोटे छात्र हैं। बोले गुरु जी मैं याद तो पीछे करूंगा, मुझको यही नहीं पता हो रहा है, लग रहा है कि सत्य क्या है। यदि कहो कि मेरा नाम युधिष्ठिर है तो ये सच नहीं है, ये तो शरीर का आत्मा, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का नहीं है। यदि ये मैं कहूं कि मेरे बाप का ये नाम है तो मैं देखता हूं कि हमारे पिता कौन है, विश्व विश्व संसार की सृष्टि करने वाले पिता के पिता के पिता, ब्रह्मा शंकर इत्यादि के पिता जो हैं, वो मेरे पिता है, तो मैं कैसे कहूं जैसे ये हमारे पिता है। स्त्री और पुरुष बहुत रहते हैं, उनको बच्चे ही किसी को नहीं होती, यदि बच्चा पैदा करने वाले हैं तो उनको नहीं कर लेते। 80 वर्ष की उम्र में तो और उनको और प्राउड हो गए हैं, वो तो और उनको बच्चा पैदा करने चाहिए, क्यों नहीं होते? इसलिए यथार्थ में परम पिता परमेश्वर है। इसलिए मैं अभी निर्णय नहीं कर पाया कि सत्य क्या चीज है, ये जगत सत्य है या क्या है, मैं सत्य हूं, ये शरीर सत्य हूं या क्या है। बस तुम ही इसके लिए प्रभु, सत्य एकमात्र प्रभु है। सत्य है उनके जो प्रभु के जो सेवक है। आत्मा सत्य है, अजर अमर है। जो इस चीज को समझ लेगा वो सत्य बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता है। इसी तरह से तुलसीदास जी को समझने के लिए तुलसीदास जी के द्वारा प्रकाशित यह जो ग्रंथ है रामायण को, उसी की रामायण को जरा अच्छी तरह से कैसे हम उनको समझेंगे। एक उत्तराखंड में उपाख्यान के रूप में प्रकाश कर रहे हैं। एक समय रामचंद्र जी ने अपने नगर के समस्त नगरवासियों को जितने प्रबुद्ध थे शब्द दिए, सब आ जाने के बाद में सबको उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रणाम करने के बाद में बोले, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ मैं कहना चाहता हूं। यदि मेरी गलती हो तो आप लोग मुझे डांट देना, और यदि मैं कुछ ठीक कहता हूं तो विचार करके उसको ग्रहण करना। उन्होंने ये कहा कि देखो, मैं सच-सच में तुमको बता रहा हूं, जगत में सभी लोग ये चाहते हैं कि दुख दूर हो जाए और सुख मिले। मैं चाहता हूं कि आप लोग सचमुच में दुखों को पार करके यथार्थ जो सुख है उसको पा सकें। ये कैसे होगा, ये कैसे संभव? यही तन कर फल विषय न भाव, सब फल स्वर्ग अंत दुख जाए। इस जगत की तो बात क्या, ये सब समय दुखपूर्ण है। एक आदमी जीवन भर सुखी भी किसी प्रकार से मान लिया जो उसको कोई रोग नहीं हुआ, किंतु किशोर तो नहीं रह सकता जीव अपने दिन मरना पड़ेगा, बड़ी दयनीय स्थिति होगी, एक ग्लास पानी भी नहीं पी सकते, वृद्धावस्था की कल्पना की। परम सुंदर एक व्यक्ति गाल पिचक गए, हार निकल गया, दम नहीं फेंक सकता, श्वास नहीं ले सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मरने के किनारे उसका दुख का वर्णन क्या, यह होना है यदि बीच में नहीं मर गए। इसलिए इस संसार में सुख नहीं है, यदि सुख चाहते हो तो आत्म निगम शुद्ध सिद्धांत जो है उर्गारी भजिए राम सब काज विचारी। विचार कीजिए, श्रुति सिद्धांत यह है उर्गा आगम निगम पुराण अनेका, अनेक है सबके पढ़ने लिखने का फल है, यही एका यही एक फल है। क्या, बिना राम के भजन के न तो दुखों का दूर होगा, दुख दूर होंगे और न तो सुख पा सकते। बारी मथे बन हो यदि शिकता थे बदते, बिनु हर भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपे। बर्फ से आग पैदा हो सकता है, आकाश में फूल खिल सकते हैं यह भी हो सकता है, कछुए के पीठ के ऊपर में केश उग सकते हैं यह भी संभव, मैं मानवता संभव भी संभव है। अंधकार वर्ष रवि नशा, अंधकार सूर्य को भी निकल जाए यह भी संभव है। बार मथे बरु पानी को भले ही मथो और उसे घी निकल जाए ये भी हम मान लेंगे, नहीं होता तो भी मान लेंगे। और जमुना की रेती को कोल्हू में पीस करके पीसो, उससे तेल भी निकल सकता है, नहीं निकलता तो भी मैं मान लेता हूं, असंभव को संभव मान लूंगा, किंतु बिनु हरि भजन न हो यह सिद्धांत अपनी। इस सिद्धांत को तुलसीदास जी कहते हैं, नौ प्रकार के प्रमाण दिए, और क्योंकि संख्या नौ ही है एक से लेकर के नौ तक, इसके बाद में फिर एक और जीरो से फिर दो से आरंभ हो जाता, इसलिए उन्होंने अंतिम के रूप में उन्होंने बताया बिन हरि भजन अनुभव, बिना हरि भजन के संसार नहीं हम पार कर सकते, दुखों और क्लेशों को पार नहीं कर सकते, और सुख की तो बात ही क्या, सुख तो मिल ही नहीं सकता। इसलिए राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए किछु हाथ नहीं, अंक रहे सस। जितने प्रकार के सुख प्राप्ति के लिए और दुख दूर करने के लिए साधन है, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में नौकरी चाकरी व्यवसाय वाणिज्य इत्यादि करेंगे, सुख की कल्पना करते हैं, दिन आता जाएगा, देखते जाएंगे एक पर एक समस्याएं आती चली जा रही, समस्याओं का अंत नहीं, जैसे सागर में लहरियां आती हैं एक के बाद में दूसरी ऐसे आती है, इनका समाधान कर सकते हैं। राम नाम को अंक, राम नाम एक, उसके बाद में एक जीरो लिखते हैं, शून्य दस कर, फिर एक जीरो दीजिए सौ बन जाएगा, और लाख ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चला जाएगा, किंतु एक को जरा पोंछ दीजिए, हटा दीजिए, कोई भी मूल्य नहीं। इसलिए जितने प्रकार के योग तपस्या इत्यादि, पढ़ना लिखना, नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यवसाय, जितने भी दुख तत्व दूर करने के लिए उपाय हैं और सुख प्राप्त करने के उपाय हैं, ये सब जीरो हैं, राम नाम ही उल्टा नाम जपत जान बाल्मीक ब्रह्म समाना बन गए। कैसे? बिना इस विद्या के, ये लौकिक विद्या कहा गया, इसके द्वारा कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता है, उसका साधन होता है। यदि कोई एकदम निरक्षर भी बालक है, कुछ न भी पढ़े, राम नाम का कुछ दिन उच्चारण करके देखें, उसमें समस्त जितने प्रकार के सद्गुण हैं आ जाएंगे। और एक महाविद्वान भी हो, हमने बड़े बड़े विद्वानों को देखे हैं, बहुत जो कि 10-20 या 50 भाषाएं जानते हैं, हिंदी के बड़े मर्मज्ञ हैं, हिंसा करते हैं, यहाँ तक कि गोमांस भी खाते हैं, धर्म कर्म का उनका विचार नहीं, उनके रहन सहन का विचार नहीं, आचार का विचार नहीं, मर्यादा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये साधु के उपाय अगस्त जी को देखा। एक समय में एक पाश्चात्य विद्वान ने हमसे पूछा, अभी मैं गया था बहुत से देशों में और अभी मुझे बुला रहे हैं बहुत से देशों में, मैंने तुलसीदास जी को सर्वत्र देखा, उनके प्रति सर्वत्र मेरी श्रद्धा देकर के मेरा हृदय गर्वित हो गया। तुलसीदास जी के विचारों को पालन करना, यह तुलसीदास के चरण में सबसे सुंदर अच्छी और मूल्यवान पुष्प। यदि हम कुछ नहीं करते, केवल राम 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 ही करें, देखिए उसमें समस्त गुण आ जाएंगे, उसमें समस्त मर्यादाएं और समस्त कुछ हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा, दुख से दूर हो जाएगा। वाल्मीकि जी भी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े, बस रत्नाकर दस्यु के रूप में वो प्रसिद्ध हैं, बस उल्टा राम करने से ऐसे। तो मैं विदेश में गया तो वहां पर उन लोगों ने कहा, एक बड़े विद्वान थे अमेरिका, उन्होंने पूछा मुझसे कि लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी उसको रावण पार करते समय बिजली जैसी निकलती थी, ये ऐसे क्यों हो गया और रावण उसको पार नहीं कर गया, क्यों? हमने कहा जैसे ये भक्ति की रेखा थी, राम नाम का यह बल था, लक्ष्मण जी सब समय राम राम करते थे, उसका यह फल हुआ कि उन्होंने लाइन दी और रावण जैसा व्यक्ति भी उसको पार नहीं कर सका। अगस्त जी ने समुद्र को सोख लिया, आप लोगों ने सुना होगा, पान कर लिया राम नाम के बल पर, विश्व की सृष्टि ब्रह्मा करते हैं ये राम नाम के बल पर, शंकर इस सृष्टि का विनाश करके फिर पुनः रूप में बना देते हैं ये राम नाम के बल पर। इसलिए रामचंद्र जी ने कहा, देखो मेरी प्रजाओं, तुम भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन करना सहज है, शांत है, सरल तरीका है। हमारे बच्चे भी यहाँ के राम राम कहेंगे, इसमें क्या लगता है, न पैसा न कौड़ी, न विद्या न बुद्धि न पांडित्य, न जाति न कुछ, इसलिए राम नाम उसको हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे वेदों में इसको इस प्रकार से लिखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समस्त सार वेद उपनिषद निगम का यही सार है। कामिनी नारी प्यारी जिन लोभी हिंदी जीविका तिमिन दुरार्थ निरंतर प्रिय लागो मोहिना। अंतिम तुलसीकृत रामायण में यह अंतिम ये दोहा दोहे में लिखा, हे श्री रामचंद्र जी मेरे आ आपका नाम मुझे उसी तरह से प्यारा हो जिस प्रकार से कामी को नारी प्यारी होती है। अभी देखा इसी नाटिका में तुलसीदास जी अपनी पत्नी पर किस प्रकार से आसक्त थे। अपनी पत्नी के ठुकराने से ही उन्होंने घर छोड़ दिया। लोभी प्रिय जिमीदान, और लोभी को जिस प्रकार से अर्थ प्यारा होता है, एक एक पैसा जोड़ता जाता है, उसमें कभी अरुचि नहीं होती है। हे प्रभु, आपके राम नाम में इसी प्रकार से हमारी रुचि है। ये राम नाम के संबंध में बस एक छोटी सी आख्यायिका कर करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। रामायण लिखा गया, वाल्मीकि ने लिखा 1,00,000 श्लोक। मनुष्य देवता और दानव तीनों लड़ने लगे, हम इसको लेंगे हम इसको लेंगे। शंकर जी उसी समय उपस्थित हुए, भाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसका विभाग कर देता हूं। उन्होंने 1,00,000 लोगों को 3 भागों में विभाग किया तो 33,000 तीनों को बांट दिया। अब रह गया 1,000, उसको 3 विभाग किया तो फिर 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, चार चरण होते हैं, एक एक चरण सबको दे दिया, बाकी एक चरण रह गया। एक चरण में आठ अक्षर होते हैं, उन्होंने दो दो अक्षर ठीक दे दिए, बाकी कितना रह गया? उन्होंने कहा यही रा और म है, ये मैं लूंगा, इतना जो परिश्रम किया। इसको इस तरह से समझिए, ये वेदों का सार ये राम नाम है। ये बच्चे लोग भी स्कूल जाने के पहले स्नान करके एक बार राम नाम करके तब आएंगे, बिस्तरे से उठे एक बार राम राम करते, सोने जाइए राम राम, स्कूल में विद्या अभ्यास करने लगे उसके पहले राम राम, यदि हो सके तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 पूरा उच्चारण कर लेंगे। अन्यथा बस केवल एक बार राम भी कह देंगे तो भी पूरा हो गया, जरूर भाव सागर से पार कर जाएंगे। इसमें कोई सब तरह से शास्त्र गारंटी, तुलसीदास जी कहते हैं इसके बावजूद भी तुम संसार से यदि उद्धार तुम्हारा नहीं हुआ और तुमने राम के चरण को प्रेम पूर्वक सेवा यदि प्राप्त नहीं की और तुम्हारा जन्म सार्थक नहीं हुआ तो मैं इसके लिए दायित्व होगा, हाथ उठा करके कहते हैं। इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, विद्या रहे न रहे, बुद्धि रहे न रहे, संसार से कोई उपेक्षित हो तो ये राम बोलवा की भांति किसी भी अवस्था में रहे, स्त्री हो पुरुष हो, मुसलमान हो हिंदू क्रिश्चियन ईसाई बौद्ध हो, उसमें भी तो गॉड नाम ही है। गॉड माने वही होता है जो हमारा ब्रह्म का अर्थ है, जी जनरेटर और ऑपरेटर डी डिस्ट्रक्टर, जो जगत का सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है वही हमारा राम, वही हमारे कृष्ण, वही हमारे गॉड हैं। थोड़ा सा एक विचार का थोड़ा सा कुछ अंतर है किंतु है एक ही चीज, एक ही शक्ति विश्व ब्रह्मांड का संचालन करती है, बड़ा दयालु है वह, उसका शरीर है निर्गुण, माने ये मत समझ लीजिए कि उसका शरीर ही नहीं है, निराकार माने प्रकृति का आकार नहीं है, प्राकृतिक हम जैसा हाड़ मांस रक्त का नहीं है, कैसा है सच्चिदानंद समस्त सद्गुणों से शोभित रामचंद्र जी। यदि उसमें दया नहीं रहेगी तो फिर किस काम के, यदि वो आकार नहीं धारण कर सकते तो ब्रह्म कैसे हो गए सर्वशक्तिमान, तो उनकी पूजा किस लिए, उनकी आराधना कैसे, तो उनमें कोई शक्ति नहीं रही। इसलिए ऐसा नहीं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि नर से नारायण हो जाएंगे तुलसी जी का पाठ करने से, या खबरदार ऐसा मत सोचना, आज तक कोई भी भगवान का भजन करके नारायण या कृष्ण या राम नहीं बन सकता, तुलसीदास ही नहीं राम बने, बस उन्होंने उनकी अनुपायनी भक्ति मांगा, अनुपायनी माने तई तथा रावत अविच्छिन्न गति से रामचंद्र जी के चरणों में हमारी मति रहे और उनकी प्रेम पूर्वक लक्ष्मण और भक्त की तरह और सीता की तरह में सेवा पा सके। कभी भी कोई भी भक्त नारायण नहीं बनना चाहता, या फूल है। शिव हम न मत करिए, शिव को नमस्कार, शिव मत बनिए, नहीं तो रावण, जरासंध और कंस की गति होगी, खबरदार मत कीजिए। शिव की पत्नी का नाम पार्वती है। यदि हम ये कहते हैं कि शिव हम, मैं ही शिव हूं, पार्वती जी दुर्गा का रूप धारण करके हमारे गले को काट करके मुंड बना मुंड माल पहन लेंगे, खबरदार ऐसा शिव मत बनो। शिव को नमस्कार, गुरु और पिता के रूप में, भक्त के रूप में। इसलिए कभी राम बन जाऊंगा, आज तक राम का कोई भी भक्त भक्त नहीं बन सके, तुलसीदास नहीं बन सके, हनुमान नहीं बन सके। हनुमान ने क्या कहा है, यह अभिमान हमारा भूल करके भी नहीं भूलू, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं राम का दास हूं, दास रहूंगा सदा के लिए, दास था दास हूं दास। ये भक्तों का ये विचार है। कभी भी राम नहीं बनते, भरत जी नहीं बने, सीता जी नहीं बने, लक्ष्मण नहीं बने, वाल्मीकि नहीं बने, तो हम क्या बन सकते हैं। इसलिए नस्य नारायण मत बनो, नारायण के सेवक बनो। ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे एक तुलसी जी का पद आता है, सिया राम मैं सब जग जाए, करो प्रणाम जोर युग पाए। जरा ध्यान से सुनेंगे विचार करें, सिया राम सब जग ज्ञानी नहीं लिखा, क्या लिखा, सिया राम मैं लिखा। ये जगत उनसे प्रकटित हुआ है, उनकी शक्ति से चराचर जगत प्रकटित हुआ है। हम राम नहीं है सकते, सब में राम देखेंगे। इन भावों को समझना चाहिए, तब तुलसीदास जी का विचार आएगा और हम भी राम राम करते हुए उन्हीं का पथ अनुसरण करके उन्हीं के समान हम रामचंद्र जी की सेवा की गति, प्रेम को गति पाएंगे, जहां पर दुख का कोई निशान नहीं है, गंध नहीं है। ये सच्ची मैं समझता हूं कि यही सच्ची उनके चरणों में श्रद्धांजलि होगी। मैं तुलसीदास जी के चरणों में भक्त चरण, वैष्णव के मुकुट मणि तुलसीदास जी, उनकी दीनता तो देखिए। सूरदास जी का कोई पद लाया गया और कहा जी सूरदास जी तो सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और इधर आपको भी श्रेष्ठ कवि मानते हैं, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है आप जरा बतलाइए, उन्हीं से पूछ लिया। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, सूर सूर तुलसी शशि। किसी ने कहा उड़गन केशव दास इत्यादि कहा, तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके कहा भाई मैं कवियों में सबसे श्रेष्ठ हूं, जितने कवि हैं उनमें श्रेष्ठ हूं। सूरदास कवि नहीं है, वो भगवान के परिकर परम भगवत भक्त हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। एक बार मीराज जी ने उनको पत्र लिखा, मेरे पति और परिवार के लोग हमें तंग करते हैं, भगवान का भजन नहीं करने देते, मैं क्या करूं, मैं घर में रह करके भजन नहीं कर पाती हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने एक लिखा पत्र उनके पास, जिनके प्रिय नाम बैदी तजिए कोटि वैभीषण, जब परम समय तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजौ कंत ब्रज बलि तन भय जग मंगल खाई। मुझे अति कहने की जरूरत नहीं है, भरत जी ने अपनी माता को केवल इसी बात के लिए कि रामचंद्र जी को वन पठाया था, 11,000 वर्ष तक वन जंगल में भेजने के बाद में कभी भी मां नहीं कहा। रामचंद्र जी जबकि लौटे, कह कही उनके पास में गई, बोली जे बेटा एक मैं तुमसे कुछ चाहती हूं। भाई मांगू, तुम क्या चाहती हो, आप तो तुम तो कौशल्या मैया को हमको और सबको मैया मैया कहता है, मैं तुमसे एक बार यही प्रार्थना करूंगी, तुम भरत बेटे से कह दो जी हमको एक बार मां कह दे, बस मेरा हृदय सुशीतल हो जाए। भरत को उन्होंने बुलाया, बुला करके रे भरत तुमसे आज तक हमने कुछ नहीं मांगा, बस एक तुमसे बात मांगता हूं। भरत जी ने चिंता की, बोले जी प्रभु कई कई को राजरानी को राजरानी को महारानी कई कई को मां कहने के अतिरिक्त आप कुछ भी कहें हमें करने के लिए तैयार, किस लिए। जरा राम को उन्होंने भेजा था, वो भी राम के आदेश से ही, राम की इच्छा से ही ऐसा किया था। कैकेयी का चरित्र मैं समझता था बहुत उज्ज्वल है, ऐसा चरित्र उज्ज्वल होना बड़ा कठिन है हमारे शास्त्र में। हम कैकेयी को भी नमन करते हैं, भरतजी को भी नमन करते हैं, ऐसा ही भरत जैसा हमारा चरित्र हो और भगवान का थोड़ा सा भजन करें, इन लौकिक क्रियाओं को भी करें, आपका जीवन निश्चय ही सुखमय और शांतिमय होगा। यही उनके चरण में प्रार्थना करता हूं, ये कृपा करेंगे कुछ भक्ति का एक कोट अपनी आंखों से एक बार हमारे तरफ निहार करके ये हमें वरदान के रूप में दें कि उनके जैसे ही कृष्ण के चरण में हमारी अविरल शुद्धा और केवल भक्ति हो। यही प्रार्थना करके मैं अपना वक्त देश में करता हूं।